एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कंपनियों के सोचने का तरीका ही बदल दिया।
हाँ,
एक तरह से ये बिजनेस स्ट्रेटजी की दुनिया में आप कह सकते हैं मील का पत्थर है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जेफरी मोर की क्लासिक किताब क्रॉसिंग द चैज्म की, मतलब खाई को पार करना।
हाँ,
ये उन किताबों में से है जिसका जिक्र सिलिकॉन वैली के लगभग हर दूसरी मीटिंग में कहीं ना कहीं आ ही जाता है।
और दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों के लिए ही नहीं है। अगर कोई मान लीजिए नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है या किसी भी इंडस्ट्री में कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा है तो ये किताब वाकई काम की है। ये समझाती है कि क्यों कुछ बेहतरीन आइडियाज शुरुआती सफलता के बाद भी अचानक से गायब हो जाते हैं।
यानी खाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो शुरुआती जोशीले ग्राहक और फिर वो आम प्रैक्टिकल ग्राहक के बीच होती है,
हाँ हाँ
वो आज भी उतना ही सच है, बल्कि भारत जैसे तेजी से बदलते बाजार में तो शायद और भी ज्यादा। तो चलिए आज इसी खाई को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि मोर इसे पार करने का क्या रास्ता सुझाते हैं।
हाँ जरूर। तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये जेफरी मोर हैं कौन, मतलब इनका बैकग्राउंड क्या है जिसने इन्हें ये इतनी गहरी समझ दी?
जेफरी मूर की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। वो आज एक जाने माने मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, वेंचर पार्टनर हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थियोरिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी ओलिविएट कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर के तौर पर।
अरे वाह, साहित्य से सीधे टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ये तो काफी अनोखा रास्ता है। मतलब आम तौर पर टेक एक्सपर्ट्स का ऐसा प्रोफाइल नहीं होता है ना?
यही तो खास बात है, और शायद इसी वजह से वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ आंकड़ों से नहीं देखते बल्कि इंसानी व्यवहार और कहानी के नजरिए से भी देख पाए।
अच्छा,
बाद में उन्होंने टेक कंपनियों जैसे रेंडन फॉर्मेशन सिस्टम्स और क्रे रिसर्च में मार्केटिंग और सेल्स में काम किया, और वो उस मशहूर PR फर्म रजिस मैकेना इंक का भी हिस्सा थे जिसने एप्पल और जेनेंटेक जैसी कंपनियों को लॉन्च करने में मदद की थी।
अच्छा, मतलब उनके पास थ्योरी भी और प्रैक्टिकल अनुभव भी, वो जमीन से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि इंसान नई चीजों को कैसे अपनाते हैं, क्या हिचक होती है उन्हें।
बिल्कुल,
और फिर इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी कंसल्टिंग फर्म द चैज्म ग्रुप शुरू की, जो कंपनियों को यही चैज्म पार करने में मदद करती है।
एग्जैक्टली। और 1991 में जब क्रॉसिंग द चैज्म पहली बार आई तो इसने इंडस्ट्री को जैसे एक नई भाषा दे दी। ये सिर्फ एक किताब नहीं रही बल्कि एक फ्रेमवर्क बन गई कि कैसे नए प्रोडक्ट्स को मास मार्केट तक पहुंचाया जाए।
ठीक है, तो अब आते हैं किताब के मूल आइडिया पर। ये चैज्म, ये खाई है क्या बला, मतलब किताब का मुख्य सार क्या है?
देखिए, किताब का कहना है कि जब कोई कंपनी कोई नई बिल्कुल क्रांतिकारी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बाजार में लाती है तो उसे अलग अलग तरह के ग्राहक मिलते हैं। शुरू में कुछ जोशीले लोग उसे अपनाते हैं, लेकिन आम ग्राहकों तक पहुंचने से ठीक पहले एक बहुत बड़ी खाई आती है, एक गैप जिसे पार करना बेहद मुश्किल होता है।
और ज्यादातर कंपनियां इसी खाई में गिर जाती हैं ऐसा?
हाँ बिल्कुल। मूर का तर्क है कि टेक्नोलॉजी अपनाने का जो पारंपरिक मॉडल हम पढ़ते हैं, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लैगार्ड्स, वो कोई सीधी लाइन नहीं है, उसमें दरारें हैं, गैप्स हैं।
अच्छा,
और सबसे बड़ी दरार, सबसे खतरनाक वाली, यानी चैज्म, वो है अर्ली अडॉप्टर्स, जिन्हें मूर विजनरीज कहते हैं, और अर्ली मेजॉरिटी, प्रैग्मेटिस्ट्स के बीच।
विजनरीज यानी वो लोग जो नयापन देखकर उत्साहित होते हैं, बड़ा फायदा देखते हैं, रिस्क लेने को तैयार रहते हैं।
हाँ।
और प्रैग्मेटिस्ट्स यानी वो समझदार व्यावहारिक लोग जो पक्का रिजल्ट चाहते हैं और जोखिम से बचते हैं।
बिल्कुल। और मूर का सबसे बड़ा इनसाइट शायद यही है कि जो बातें विजनरीज को पसंद आती हैं, जैसे क्रांतिकारी बदलाव, सबसे आगे होना,
हाँ हाँ
वही बातें प्रैग्मेटिस्ट को डराती हैं।
उनकी जरूरतें, उनकी सोच, उनके खरीदने के कारण
बिल्कुल अलग होते हैं।
बिल्कुल।
विजनरी भविष्य देखता है, प्रैग्मेटिस्ट आज की समस्या का पक्का भरोसेमंद समाधान चाहता है।
और इसी फर्क को न समझ पाने के कारण अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी मुख्य बाजार तक पहुंच ही नहीं पाती।
तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि जो मार्केटिंग पहले काम कर रही थी वही बाद में नुकसान पहुंचा सकती है। कमाल है। तो किताब इस खाई को पार करने का तरीका भी बताती है।
हाँ बिल्कुल, यही तो किताब का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा है। पहले वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझाते हैं, फिर सल्यूशन देते हैं, और सल्यूशन बड़ा दिलचस्प है।
क्या वो कहते हैं कि पूरे बाजार पर एक साथ धावा बोलने की बजाय एक बहुत छोटे खास बीच हेड यानी मोर्चे पर अपनी पूरी ताकत झोंक दो, और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि होल प्रोडक्ट यानी पूरा समाधान दो।
अच्छा चलिए, इन विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। पहले वो ग्राहक वाला मॉडल जो है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन लाइफ साइकिल TALC, ये कौन कौन से समूह हैं जरा विस्तार से बताएं।
सबसे पहले हैं इनोवेटर्स, ये टेक गीक्स हैं जिन्हें नई टेक्नोलॉजी से ही प्यार है, बस टेक्नोलॉजी के लिए। फिर आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स या विजनरीज, ये वो लोग हैं जो नई टेक्नोलॉजी से कंपटीशन में बढ़त बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा रणनीतिक फायदा देखते हैं, ये लोग जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं।
ठीक है, और इनके ठीक बाद आती है वो खाई, जिसकी दूसरी तरफ है अर्ली मेजॉरिटी या प्रैग्मेटिस्ट्स। ये विजनरी से इतने अलग क्यों हैं? यहीं पर मामला फंसता है ना?
बिल्कुल, यहीं असली खेल है। प्रैग्मेटिस्ट बहुत व्यावहारिक होते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी तभी अपनाते हैं जब वो क्या कहते हैं, साबित हो चुकी हो, भरोसेमंद हो।
अच्छा,
प्रूव्ड हो।
हाँ, प्रूव्ड हो, और उनकी मौजूदा काम करने के तरीके को बेहतर बनाए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। वो विजनरीज की तरह हवा में तीर नहीं चलाना चाहते। और सबसे जरूरी बात, वो खरीदने से पहले अपने जैसे दूसरे प्रैग्मेटिस्ट का अनुभव जानना चाहते हैं, वो रेफरेंस देखते हैं।
अच्छा,
मतलब वो जानना चाहते हैं कि भाई मेरे जैसे दूसरे लोगों ने इसे इस्तेमाल करके फायदा पाया है या नहीं।
एग्जैक्टली, बिल्कुल, और नई टेक्नोलॉजी के लिए ये रेफरेंस शुरू में होते नहीं है।
सही बात है।
और मजे की बात, विजनरीज का समर्थन उन्हें भरोसे की जगह खतरे का संकेत लगता है। उन्हें लगता है कि अरे ये तो अभी कच्ची चीज है, भरोसे लायक नहीं है, यहीं आके गाड़ी अटक जाती है। बाकी दो समूह भी हैं, लेट मेजॉरिटी कंजर्वेटिव्स, जो तब खरीदते हैं जब चीज बिल्कुल स्टैंडर्ड बन चुकी हो, और लैगार्ड्स स्केप्टिक्स, जो बदलाव पसंद ही नहीं करते। लेकिन असली लड़ाई प्रैग्मेटिस्ट को जीतने की है, उस खाई को पार करके।
ये तो वाकई एक कैच 22 वाली स्थिति हो गई। बिना प्रैग्मेटिस्ट्स के रेफरेंस नहीं मिलेंगे, और बिना रेफरेंस के प्रैग्मेटिस्ट्स खरीदेंगे नहीं, तो मोर इस चक्रव्यूह को तोड़ने का क्या रास्ता बताते हैं? वो बीचहेड वाली बात क्या थी?
हाँ, तो मोर यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के डी-डे हमले की एनालॉजी, उसका उदाहरण इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा,
कैसे?
जैसे मित्र सेनाओं ने नॉर्मैंडी के समुद्र तट के एक छोटे से हिस्से पर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कब्जा करने के लिए।
हाँ,
वैसे ही कंपनी को भी पूरे बड़े बाजार को भूलकर एक बहुत ही छोटा, स्पेसिफिक और जीतने लायक निच मार्केट को चुनना चाहिए, एक छोटा सा सेगमेंट, इसे वो बीचहेड कहते हैं।
मतलब पहले एक छोटे से मैदान में चैंपियन बनो, पूरी दुनिया जीतने की कोशिश करने के बजाय।
ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता?
लगता है, पर है नहीं। उस छोटे से निच मार्केट पर इतना फोकस करो कि आप वहां के निर्विवाद लीडर बन जाओ, राजा बन जाओ उस छोटे तालाब के। इसके दो फायदे होंगे। पहला, आपको उस नीश के प्रैग्मेटिस्ट ग्राहकों से वो कीमती रेफरेंस मिलेंगे जो दूसरे प्रैग्मेटिस्ट को भरोसा दिलाएंगे।
अच्छा।
दूसरा, आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बना पाएंगे और सीखेंगे कि इन ग्राहकों को कैसे बेचना है, सपोर्ट करना है। फिर इस जीत के बाद आप धीरे धीरे मिलते जुलते दूसरे नीश मार्केट्स में फैल सकते हैं। इसे मूर बॉलिंग एली कहते हैं।
बॉलिंग एली, जैसे बॉलिंग में एक पिन गिराने से बाकी गिरती हैं।
हाँ बिल्कुल, एक नीश जीतने से दूसरे को जीतना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास रेफरेंस और अनुभव होता है।
ये सुनने में तो सही लग रहा है, पर वो सही बीचहेड चुनना और फिर वहाँ के ग्राहक की जरूरत को इतनी गहराई से समझना, ये कैसे होगा? ये तो बहुत मुश्किल होगा।
मुश्किल तो है, पर यही असली काम है। इसके लिए मूड टारगेट कस्टमर सिनारियो बनाने पर जोर देते हैं।
टारगेट कस्टमर सिनारियो मतलब?
मतलब सिर्फ ये ना कहें कि हम छोटे बिजनेस को बेचेंगे, ये बहुत वेग है, बल्कि कहें हम उस डेंटिस्ट को बेचेंगे जिसके क्लिनिक में 3 से कम लोग हैं और जिसे अपॉइंटमेंट मैनेज करने में दिक्कत आती है। एकदम सटीक, पिन पॉइंटेड।
अच्छा, बिल्कुल स्पेसिफिक।
हाँ, उस खास ग्राहक की रोज की दिक्कत को समझकर उसके लिए एक ऐसा समाधान बनाओ जिसे वो मना ही ना कर सके। यही फोकस चाहिए पहले प्रैग्मेटिस्ट को जीतने के लिए।
और ये समाधान सिर्फ टेक्नोलॉजी या कोर प्रोडक्ट नहीं है, है ना? आपने पहले होल प्रोडक्ट की बात की थी, वो क्या है? ये बहुत जरूरी लग रहा है मुझे।
हाँ, ये शायद किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। मूर कहते हैं कि प्रैग्मेटिस्ट सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर या गैजेट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं होल प्रोडक्ट।
होल प्रोडक्ट, पूरा प्रोडक्ट।
हाँ, इसका मतलब है आपका कोर प्रोडक्ट प्लस वो सब कुछ जो ग्राहक को अपनी समस्या का 100% समाधान पाने के लिए चाहिए।
जैसे?
जैसे इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन, जरूरी एसेसरीज, यहाँ तक कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का भरोसा भी शामिल है। सोचिए, आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं।
हाँ।
तो सिर्फ गाड़ी नहीं देखते, आप देखते हैं कि चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क कैसा है, सर्विस सेंटर कहाँ है, बैटरी की वारंटी क्या है, ये सब मिलकर होल प्रोडक्ट बनता है।
अच्छा, मतलब कंपनी को सिर्फ अपना प्रोडक्ट चमकाने से काम नहीं चलेगा, उसे पूरा इकोसिस्टम बनाना या सुनिश्चित करना पड़ेगा ताकि ग्राहक को लगे कि हाँ, ये मेरे लिए पूरी तरह काम करेगा, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं।
बिल्कुल, विजनरी शायद कुछ कमियों के साथ जुगाड़ करके काम चला ले, पर प्रैग्मेटिस्ट को पूरा फिनिश्ड पैकेज चाहिए, और ये जिम्मेदारी कंपनी की है न कि ग्राहक की।
समझ गई, ठीक है। तो हमने सही निश चुना, ग्राहक को गहराई से समझा, होल प्रोडक्ट बनाया, पर बाजार में तो और भी लोग होंगे, कंपटीशन से कैसे निपटें, अपनी पहचान कैसे बनाएं?
बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मूर पोजिशनिंग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रैग्मेटिस्ट ग्राहक आपके प्रोडक्ट को किसी जानी पहचानी कैटेगरी में रखकर ही समझ पाते हैं, उन्हें संदर्भ चाहिए। तो आपको दो चीजें पहचाननी होंगी, आपका मार्केट ऑल्टरनेटिव क्या है, यानी ग्राहक आज ये काम कैसे कर रहा है, शायद कागज पर या किसी पुराने तरीके से।
ओके।
और आपका प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव कौन है, यानी दूसरी कौन सी नई कंपनी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने का दावा कर रही है।
अच्छा, मतलब कंपटीशन।
हाँ, आपकी पोजिशनिंग ऐसी होनी चाहिए जो साफ कहे, हम पुराने तरीके से कहीं ज्यादा बेहतर हैं और दूसरी नई कंपनियों से ज्यादा भरोसेमंद और स्थापित हैं। आपको ग्राहक के दिमाग में अपनी एक साफ भरोसेमंद जगह बनानी होगी।
और इन प्रैग्मेटिस्ट तक पहुंचना कैसे है, बेचना कैसे है, कीमत क्या रखनी है, यहाँ भी विजनरी से अलग सोचना होगा, है ना?
हाँ बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो होने चाहिए जिन पर प्रैग्मेटिस्ट भरोसा करते हैं, जैसे कोई जाना माना इंडस्ट्री स्पेसिफिक रीसेलर या स्थापित सेल्स टीम। अब शायद फाउंडर का सीधे बेचना उतना भरोसेमंद ना लगे।
अच्छा।
और प्राइजिंग, वो सिर्फ फीचर या टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं हो सकती, ये उस वैल्यू पर आधारित होनी चाहिए जो आप ग्राहक को दे रहे हैं, जैसे लागत में कितनी बचत हो रही है या काम कितना आसान हो रहा है। और कीमत उस निच मार्केट के ग्राहक के बजट में भी फिट होनी चाहिए। लक्ष्य है उस बीचड़ में मार्केट लीडर बनना, जिससे आपको थोड़ी प्राइसिंग पावर भी मिले, क्योंकि आप वहां बेस्ट ऑप्शन हैं।
वाह, ये तो पूरा एक खाका, एक फ्रेमवर्क है, बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। अगर हमें इस किताब के मान लीजिए 3-4 सबसे महत्वपूर्ण संदेश निकालने हो तो वो क्या होंगे?
मेरे लिए पहला तो यही है कि चैज़म असल में लोगों के दिमाग में है, उनकी सोच में है, ये कोई डेमोग्राफिक चीज नहीं है। विजनरी और प्रैग्मेटिस्ट की दुनिया देखने का नजरिया ही अलग है, ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है।
सही कहा। दूसरा, बड़ा बनने के लिए पहले छोटा सोचना होगा, वो बीचहेड स्ट्रैटेजी, मतलब पूरे बाजार पर फोकस करने से बेहतर है एक छोटे से हिस्से पर राज करना। निशिंग इज पावरफुल, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी।
तीसरा, होल प्रोडक्ट ही जीत की कुंजी है, अधूरा समाधान प्रैग्मेटिस्ट को कभी नहीं जीत पाएगा। आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पूरा एक्सपीरियंस और इकोसिस्टम देना होगा, ये बहुत मेहनत का काम है।
चौथा, आपकी पोजिशनिंग तय करती है कि ग्राहक आपको कैसे देखता है, किस खांचे में रखता है, आप किसके मुकाबले खड़े हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपको ग्राहक के दिमाग में सही जगह बनानी होगी।
और शायद पांचवा ये जोड़ सकते हैं कि सफर के हर पड़ाव पर अलग रणनीति चाहिए, जो आपको शुरुआत में सफल बनाता है वही बाद में बाधा बन सकता है, कंपनी को भी बदलना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है।
भारत में हम ये रोज देखते हैं, जैसे आपने कहा UPI कितनी तेजी से आम हो गया, शायद क्योंकि उसने एक तरह का होल प्रोडक्ट दिया, आसान, सुरक्षित, हर जगह चलने वाला।
हाँ,
वही कई ऐप आते हैं, शुरू में बड़ी हाइप होती है, फिर गायब हो जाते हैं। शायद वो प्रैग्मेटिस्ट का भरोसा नहीं जीत पाते या वो पूरा समाधान नहीं दे पाते।
बिल्कुल। और यहाँ भरोसे और देखा देखी, मतलब रेफरेंस का महत्व शायद पश्चिम से भी ज्यादा है। लोग जानना चाहते हैं कि मेरे जैसे और लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत जरूरी है यहाँ।
हाँ बिल्कुल। किताब में कुछ पंक्तियां या विचार वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। कुछ ऐसी यादगार बातें साझा करें जो दिमाग में रह जाती है।
जरूर। एक बात जो मुझे हमेशा याद रहती है, चैज़म दो बाजारों के बीच का गैप है जिनकी वैल्यू प्रोपोजिशन बिल्कुल अलग है। शुरुआती बाजार रणनीतिक बढ़त चाहता है, मुख्य धारा का बाजार उत्पादकता में सुधार। ये साफ करता है कि क्यों आपको अपना मैसेज, अपनी पिच बदलनी पड़ती है।
बिल्कुल। और होल प्रोडक्ट पर ये बात कितनी सही है, प्रैग्मेटिस्ट अपनी समस्या का 100% समाधान खरीद रहे हैं, वो टुकड़े जोड़कर खुद पजल सॉल्व नहीं करना चाहते। ये कंपनी की जिम्मेदारी पर जोर देता है कि भाई काम पूरा करके दो।
और बीचहेड वाली बात का सार, चैज़म पार करने की कुंजी है एक नीश मार्केट चुनना और उसे जीतने के लिए सबको झोंक देना। बड़े तालाब की छोटी मछली से बेहतर है छोटे तालाब का राजा बनना। फोकस की ताकत, ये मुझे बहुत पसंद है।
और पोजिशनिंग पर ये नजरिया कितना अलग है। पोजिशनिंग वो नहीं जो आप प्रोडक्ट के साथ करते हैं, ये वो है जो आप ग्राहक के दिमाग के साथ करते हैं। लड़ाई शेल्फ स्पेस की नहीं, माइंड स्पेस की है। ये बहुत गहरा है।
हाँ, और एक सीधी सपाट बात जो शायद थोड़ी चुपती भी है, आप दो छोटी छलांगों में एक खाई पार नहीं कर सकते। मतलब आधा अधूरा कमिटमेंट काम नहीं करेगा, आपको पूरी हिम्मत और तैयारी के साथ वो बड़ी छलांग लगानी होगी, डर कर नहीं चलेगा।
तो ये सब सुनने में तो बहुत ज्ञानवर्धक है, पर आम जिंदगी में कैसे काम आ सकता है? मान लीजिए कोई श्रोता अपना नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है या कर रहा है,
उनके लिए तो ये एक तरह का नक्शा है। भीड़ में खोने के बजाय वो सही बीच है ढूंढ सकते हैं।
हाँ,
सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर नहीं, होल प्रोडक्ट देने पर सोच सकते हैं शुरू से ही। और अपनी पिच इन्वेस्टर्स और ग्राहकों के लिए ऐसी बना सकते हैं जो हवा हवाई ना लगे, बल्कि भरोसे और ठोस फायदे पर टिकी हो।
और जो लोग किसी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर हैं या मार्केटर हैं, उनके लिए
वो इस फ्रेमवर्क से समझ सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट अभी किस स्टेज पर है। क्या वो अब भी विजनरीज को बेच रहे हैं, जबकि जरूरत प्रैग्मेटिस्ट को जीतने की है।
अच्छा,
वो होल प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं ये पहचान सकते हैं और उन्हें दूर करने पर काम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, वो उन फीचर्स या आइडियाज को ना कह सकते हैं जो आकर्षक लगें पर बीचहेड जीतने में मदद ना करें, फोकस बनाए रख सकते हैं।
हाँ, ये ना कहना बहुत जरूरी होता है, और मैसेजिंग को क्रांतिकारी से बदलकर भरोसेमंद और प्रैक्टिकल बना सकते हैं जब सही समय हो।
बिल्कुल,
निवेशकों के लिए भी उपयोगी होगा, है ना? वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसे?
हाँ, निवेशक कंपनियों का मूल्यांकन करते समय ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये कंपनी चाज़म को समझती है? क्या इनके पास इसे पार करने का कोई ठोस प्लान है? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं या पूरा समाधान बनाने की क्षमता रखते हैं? ये उनके रिस्क असेसमेंट में मदद कर सकता है।
और ये सिर्फ टेक कंपनियों के लिए नहीं है, जैसा आपने पहले भी कहा था।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसी भी नई चीज पर लागू होता है जिसे आम लोगों तक पहुंचाना है। सोचिए, सोलर एनर्जी को घरों तक पहुंचाना, शुरू में कुछ लोग लगवाते हैं, विजनरी, पर आम आदमी प्रैग्मैटिस्ट तभी लगवाएगा जब इंस्टॉलेशन आसान हो, भरोसेमंद हो, सब्सिडी मिले, मेंटेनेंस हो, मतलब होल प्रोडक्ट मिले।
हाँ, सही उदाहरण है। या ऑनलाइन एजुकेशन को पारंपरिक डिग्री का विकल्प बनाना, या किसी नए हेल्थ ट्रेंड को आम बनाना, हर जगह शुरुआती उत्साह के बाद मुख्य धारा को अपनाने में एक चैज़म आ सकती है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि इनोवेशन में सफलता सीधी रेखा में नहीं मिलती। शुरुआती तेजी, वो हाइप, धोखा दे सकती है। उस खाई को पार करने के लिए एक बहुत सोचा समझा, फोकस्ड और कभी कभी मुश्किल लगने वाला बदलाव जरूरी है अपनी रणनीति में। मोमेंटम से ज्यादा जरूरी है सही रणनीति और सही समय पर बदलाव।
और मेरे लिए सबसे गहरी बात ये रही कि ग्राहक के मन को समझना कितना जरूरी है। ये सिर्फ मार्केट सेगमेंट की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी की बात है। विजनरी का दिमाग अलग चलता है, प्रैग्मेटिस्ट का अलग, उनकी उम्मीदें, उनके डर अलग हैं। इससे समझे बिना आप मुख्य धारा का बाजार कभी नहीं जीत सकते। और हाँ, वो होल प्रोडक्ट वाली बात, कंपनियां सिर्फ चीजें नहीं बेचती, वो समाधान बेचती हैं, और ग्राहक को पूरा समाधान चाहिए, आधा अधूरा नहीं।
तो कुल मिलाकर क्रॉसिंग द चैज़म हमें सिखाती है कि इनोवेशन का रास्ता घुमावदार है, सीधा नहीं। आपको प्रोडक्ट फोकस से मार्केट फोकस पर आना होता है, सबको खुश करने की कोशिश छोड़कर एक छोटे हिस्से पर जीत हासिल करनी होती है पहले, और लगातार छोटी जीत के बजाय कभी कभी एक बड़ी सूची समझी छलांग लगानी पड़ती है उस खाई के पार।
हाँ, ये किताब हमें यथार्थवादी बनाती है, पर साथ ही रास्ता भी दिखाती है। ये बताती है कि अपने आइडिया को एक टिकाऊ बिजनेस में बदलना मुश्किल जरूर है, पर सही रणनीति, फोकस और हिम्मत के साथ मुमकिन है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।